कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था।
ओम शांति। हमको आज मालूम नहीं था कि हमें आज डबल एनर्जी मिलने वाली है। 10 मिनट पहले ही जैसे आप सबको पता लगा कि भाई साहब क्लास कराएंगे, आपके चेहरे खिल गए थे। ऐसे लगता था कि जैसे कोई बहुत बड़ा खुशी का खजाना मिल गया हो, लॉटरी खुल गई हो। आदरणीय भाई साहब का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक आपके भाई साहब को हम दिल्ली में सुनते हैं, लेकिन पांडव भवन बाबा की साकार भूमि पर, तपस्वी भूमि पर हम सबको भाई साहब की क्लास मिले और भी उसमें शक्ति भर जाती है। पहले डॉक्टर प्रेमासन ने आप में खूब अच्छी एनर्जी भरी, फिर आप गन्ने का रस पीकर आए और अब बाबा की बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी शक्तिशाली क्लास मिल रही है। इससे सुंदर सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। भाई साहब बहुत सुंदर और ताकतवर और सरल रूप में क्लास कराते हैं। आज हम भाई साहब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ये पांडव भवन प्यारे बाबा की मम्मा की सभी आदि रत्नों की तपस्या भूमि है और तपस्या भूमि पर आकर तपस्या करना और दूसरी भूमि पर तपस्या करना, उसका फर्क तो आप स्वयं ही अनुभव कर रहे होंगे कि यहां का जो वाइब्रेशन है अति पावरफुल है। जैसे कहते हैं ना कि देवता तो सतयुग त्रेता में होकर चले गए, वो तो दुनिया अलग थी, लेकिन आज भी देवी देवताओं के मंदिर में जो जाता है उसको इस घोर कलयुग में भी कुछ अलग वाइब्रेशन मिलता है। देवताओं के हाथ और नैन वरदानी होते हैं तो भगत का महसूस होता है हमें वरदान मिल रहा है। तो यहां पर तो सारे विश्व के जितने देवता बने कहां से बने, यहां से बने। तो ये तो वो तपस्या भूमि है जहां देवता पैदा हुए थे, इसलिए आपने ठीक जगह पर आकर ये तपस्या की। हम तो जब यहां आते हैं तो एक एक स्मृति आती है। अभी थोड़ी देर बाबा के कमरे में गए, वो 50 साल से पहली स्मृतियां आई। कैसे बाबा, आपने देखा होगा छोटी सी गद्दी है, उस पर कुछ सराहने लगे हुए हैं। अब तो ये बाबा का कमरा डबल है, असली इससे आधा होता था। और आधे कमरे में रहकर बाबा ने तपस्या की, आधे हिस्से में फल रखे होते थे, अब क्योंकि बैठने वाले आते हैं तो उसको बढ़ा दिया गया। क्या क्या सादगी थी बाबा की और कितना स्नेह था। एक वहां चारपाई भी लगी हुई है जिसमें बाबा से बच्चे रात को गुड नाइट करने आते थे और एक एक बच्चा गुड नाइट करता था, तो जैसे भगवान से रात को गुड नाइट करो सुबह गुड मॉर्निंग करो, तो सारे स्थान ये जो है, यद्यपि और भी स्थान मधुबन में है लेकिन ये जो स्थान है ये विशेष है। यहां आते ही व्यक्ति के अंदर तपस्या के संस्कार आप ही आ जाते हैं। अभी आपको वो पुरानी दुनिया याद है जहां से आप आए हैं, उसका नाम सुनते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या दुनिया है। असली तो चाहते हम जाए ही ना, है ना, यहीं से सूक्ष्म लोक जाए परम धाम जाए, अब वापस जाने का दिल नहीं करता। इसलिए वो स्थान जिसको देवता भी तरसते हैं क्योंकि यहीं से बने थे, वो वातावरण जिसका नाम मधुबन आज तक गाया जाता है, कई मधुबन बने हुए हैं इसकी याद में, पर असली मधुबन तो यही है। बन मैंने है टोटल पुरानी दुनिया भूली हुई, अब मधु मैंने मीठा, तो इसलिए कहा जाता है कि जो मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी और साधारण मक्खी क्या अंतर है? मधुमक्खी फूलों पर बैठती है, फूलों को देखती है, और दूसरी का क्या वर्णन करें। इसलिए ये स्थान ही ऐसा है, फूलों से ही निकलता है मधु। अब बाबा कहते हैं आप बच्चों चेतन फूलों के साथ ही ये दुनिया कहलाती है फूलों का बगीचा, और दूसरी का तो दूसरा नाम है। इसलिए चेतन फूलों में क्या होता है कि फूल सुगंध देते हैं, आज तक भी फूलों का कितना महत्व है। लोग नकली फूल भी रखने लगे पर फूल ही रखते हैं, अब फूल सुगंध देते हैं और चेतन फूल, अब बाबा ने कितने फूल पैदा कर दिए, सारी दुनिया में कितनी नर्सरियां हैं जो जब इकट्ठी हो जाएंगी बगीचा हो ही जाएगा। अब भट्टी हम कर रहे हैं, पहले बाबा हमको कमल के फूल कहता था, कमल के फूल समान बनो, अब तो अंत का समय आ गया है, अब कौन से फूल कहता है बनो, हैं? हाँ, पहले बाबा सूरजमुखी का एग्जाम्पल देता था, वो फूल ऐसा होता था जो सूर्य के साथ साथ आपे घूमता था। आज सूरजमुखी का तेल निकालते हैं तो इतने इकट्ठे बो देते हैं, वो बेचारे घूम ही नहीं सकते, आप कहीं जाके देखते। अब बाबा कहते रूहे गुलाब जो सबसे बेस्ट फ्लावर होता है, बाबा को रूहे गुलाब बहुत पसंद था, तो इसलिए अब कमल को तो भूल जाएं, अब क्या करना है, रूहे गुलाब में बहुत बढ़िया रंग होता है और साथ साथ सुगंध होता है नेचुरल, तो रूहे गुलाब को कहीं भी रख दो ना वो अपनी सुगंध छोड़ेगा, ना वो अपनी सुंदरता छोड़ेगा। उसके पत्ते भी कर दोगे तो पत्ते भी लोग काम में लाते हैं बरसाने के लिए। अब बाबा कहता है सुगंध कौन सी है, कौन सी सुगंध है? गुणों की, दिखावे के फूल नहीं। और सुंदरता कौन सी है? ये सुंदरता की झलक और फलक दिखाई पड़नी चाहिए। तो बाबा ने फाइनल अब जो भट्टियां हो रही हैं क्या लक्ष्य दिया हमें, जब कब्रिस्तान के नजदीक जाते हैं तो बॉडी को क्या करते हैं? उसका मुंह फेर देते हैं। अब तू उधर का मुंह कर और इधर को टोटल पीठ। अब भट्टियों का क्या मतलब है? अगर आगे तो पुरुषार्थ ही थे कि संबंध को निभाना है, कमल बन के निभाना है, सबसे पहला शरीर है इसको चलाना है। लेकिन ये बड़ा सूक्ष्म है कि आप शरीर का, बाबा कहता है संगम का शरीर वैल्यूएबल है, लेकिन वो वैल्यूएबल कहते 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 कहीं शरीर का ध्यान ज्यादा और शरीर को चलाने वाला जो है उसका घटा तो नहीं देते। और शरीर के साथ बाकी सब चीजें हैं, क्या पता हम कह रहे हो हम सबसे मुक्त हैं, बाबा सब तेरा ही है, रेडी हैं, अभी कहो हम चलते हैं। जब अचानक आ जाए फिर हो ना पाए, है ना? इसलिए बाबा कहता है कि अब आपको सचमुच रेडी होना है। बाबा ने हमको विष्णु का लक्ष्य दिया है। अगर किसी को श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है या उनके वंश में भी आना है वैष्णव वंश में, तो क्या लक्ष्य है अपने सामने क्या रखना चाहिए? सिर्फ परम धाम रख लो, ब्रह्मा बाबा रख लो, योग में बैठ जाओ, ये तो दवाई है, लेकिन लक्ष्य क्या है? हमको विष्णु जैसा बनना है। अब विष्णु की क्या क्वालिटीज हैं? कि विष्णु जो है पक्का वैष्णव जो होगा वो विष्णु के खानदान में आएगा। अब पक्का वैष्णव कौन होता है? एक तो संसार के वैष्णव होते हैं, शाकाहारी वैष्णव हैं, रोज स्नान करते हैं वैष्णव हैं, ड्रेस बदलते हैं, सफाई रखते हैं वो वैष्णव हैं। लेकिन पक्के वैष्णव कौन हैं? जिनका आंखों का भोजन, कानों का भोजन, मन का भोजन कौन सा हो? देवताओं जैसा हो। देवता मैंने एक्सपोर्ट करने वाला, देवता मैंने इंपोर्ट करने वाला। तो पहली बात तो यह है कि क्या हमें बाहर से किसी भी चीज का लेने की आवश्यकता पड़ती है, या आकर्षण आता है, या कोई भय आता है कि इसको लेना तुम्हें पड़ेगा ही? ये तो नहीं है, क्योंकि बाहर का प्रभाव अगर किसी तरीके का हमारे पर आता है तो हमारा प्रभाव बाहर नहीं जा सकता। या तो व्यक्ति उधार ले रहा है या किसी को दान कर रहा है, तो दान करने वाले को ऐसा तो नहीं कि आप उधार लेके दान करेंगे, नहीं। तो वैष्णव का मतलब है सूक्ष्म ढंग से देखना। हम सेवा बहुत अच्छी करते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छी सेवाधारी है, एकदम नंबर वन सेवाधारी है, कहीं सूक्ष्म में हमें इसका भी कोई बहुत सूक्ष्म प्रकार का नशा तो नहीं है कि मैं अच्छा सेवाधारी हूं। क्योंकि ये कहा तो बाकी सेवाधारी क्या हो गए, मेरी नजर में वो क्या हो गए। जैसे बाबा कहता है कि आप किसी से विशेष, उसके गुणों के कारण ही उससे विशेष कनेक्शन रखते हो, नाम तो है सेवा का कनेक्शन रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी से विशेष कनेक्शन रखते हो, आपको इजी लगता है, आपको कहके आपके कमरे में किसको डालें, आप चॉइस देते हो इसको डाल दो तो उसको भी अच्छा रहेगा, मुझे भी अच्छा रहेगा। ये नहीं कहते जिसको मर्जी डाल दो। अब ये क्या है, इसका मतलब कि कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा से विशेष समझती है कि ये ज्यादा मेरे लिए सहज है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बंधन है। हम बाकी सब का स्नेह खींचकर, मान लो इस हॉल में इतने भाई बहन बैठे, सब बाबा के बच्चे हैं, अगर हम इन सब का स्नेह खींचकर पांच छह को दे रहे हैं, उनका हिस्सा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसलिए कहते हैं निमित्त। निमित्त को ये नहीं होता कि भी मैं निमित्त तो हूं, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं ज्यादा अच्छा निमित्त हूं। इसी प्रकार से वैष्णव, बाबा कहता है कान का भोजन भी वैष्णव होना चाहिए। थाली का भोजन तो वैष्णव हो गया, कान का भोजन कैसा है कि अगर अभी तक संसार समाचार तो छोड़ दो, ब्राह्मण परिवार का समाचार, बाबा की पूरी मुरली आई हुई है, तुम बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अरे फिर आगे बीबीसी सुनाएंगे। ये है, अपने को बहुत चतुर समझते हैं कि हम ये सुना रहे हैं तो वैष्णव हुए। बाबा कहता है सहन किया, बहुत अच्छा किया। किसके लिए किया, अपने लिए किया या दूसरे के लिए किया? वास्तव में तो सहन करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सहन करना क्या होता है, अब सतयुग में जितनी शक्तियां हैं उसमें सहन शक्ति है नहीं। सहन हम इसलिए करते हैं कि कुछ ना कुछ हमारा कमल फूल समान वाटरप्रूफ नहीं है, अंदर कुछ प्रभाव आ जाता है। आपने वाटरप्रूफ छतरी ले ली, तीन छेद हैं उसमें, अब तीन छेद से पानी आ रहा है, आप कहेंगे भी मुझे सहन करना पड़ रहा है, पानी आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? तो अपने आप को सेट करने में सहन करना क्या होता है, आप सिटी में जाते हैं कई जगह ट्रैफिक होता है, लिफ्ट में भी जाओ तो लाइन होता है, उस वक्त नहीं, आप कहते मुझे बहुत सहन करना पड़ा, ये तो है ही है, होना ही है। फिर बाबा कहता सहन करके उसको हजम नहीं करना, समाना नहीं, तो फिर दूसरे को जाके कहना देखो तुम्हें नहीं पता मुझे जितना सहन करना पड़ता है ना, इसी को नहीं पड़ता। अब इसका मतलब क्या हुआ, अपनी कमजोरी बताना दूसरे को भी। तो भगवान कहते हैं ये सारी छोटी 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 चीजें हैं, वैष्णव अगर उसको कोई देगा भी उल्टी चीज तो वो क्या करेगा, उसको संभालेगा, उसको भी शिक्षा देगा कुछ कि भाई तेरा मित्र है तेरे को ऐसे कह रहे हैं। कानों का के बाद आंखों का भोजन, आंख बाबा कहते हैं सबसे ज्यादा ऐसी इंद्री है आपकी आंख, बहुत सूक्ष्म है, इस नजर से निहाल भी कर सकते हैं और इस नजर से बेहाल भी कर सकते हैं। अब आंख हमारी क्या देखे जो हम वैष्णव बने, तो आंख को केवल क्या देखना है, गुण ही गुण देखना है, गुण ही अगर अवगुण देखा तो वैष्णव नहीं है जी। अब गौर से देखिए कि द्वापर से हमारा कसूर नहीं है किसी का, परंतु द्वापर से लेकर आदत पड़ी हुई है और अब तो बहुत ज्यादा आदत पड़ गई है। अब अवगुण देखना, ब्राह्मण परिवार में भी देखना, कोई बेचारा ढीला ढाला स्टूडेंट है, बाबा कहता है मेरा बच्चा नंबर वन सतयुग के से लेकर और त्रेता के लास्ट तक भी मेरा बच्चा। अब बाबा कभी किसी के अंदर फर्क डालेगा कि मेरे प्यारे बच्चे के लास्ट है, इग्नोर करो, बल्कि उसको ज्यादा प्यार करेगा। डॉक्टर भी मुश्किल पेशेंट को, नाजुक को ज्यादा देखता है, टीचर भी ज्यादा पढ़ाता है, माता पिता भी कोई बच्चा बेचारा डिसेबल्ड हो तो उसका ज्यादा तरस खाते हैं। और हम कौन हैं कि हमें अपना पुरुषार्थ तो करना है, पर चिंतन करके किसी के बारे में भी ये सोचना, यानी उसमें 100 गुण होंगे, दो एक दो तो होंगे ही, हम उसका ये ऐसा है मन में लाना, यानी मैल देख रहे हैं इसको समझते मैली चीज है, दूसरे का मैल अपने अंदर लाना कहां की अकलमंदी है। हम खुद साफ होने की कोशिश कर रहे हैं, 20 लोगों की मैल अपने अंदर ले आए तो मन तो हो गया मैला, फिर वैष्णो कहां के रहे। आज तो मंदिरों के भी लोग इतनी सफाई करते हैं, ये तो मन मंदिर है, अब इसमें क्या डालना चाहिए, अब कैसे चेंज हो, क्योंकि बहुत जन्मों से ये आदत पड़ी हुई। अब बाबा कहता है तुम्हारा काम है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना। एक समुंदर का जहाज है, वो समुंदर में चल रहा है, समुंदर में कितना पानी होता है, बहुत, चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है। मान लो सारा समुंदर नेगेटिव है और आपकी नैया है, उस पार जानी है, आपकी नैया को तब नुकसान होगा, तब डूबेगी, अगर उस पानी को अंदर ले आओगे। समुंदर का पानी अंदर आया तब नुकसान होगा ना। अब बाबा कहते हैं कि दुनिया में नेगेटिव है, हम ये कहना शुरू कर दें कि दुनिया में बहुत नेगेटिव है, कुछ ना कुछ असर तो आएगा ही, तो दुनिया वालों के लिए है। भगवान के बच्चे, भगवान इस दुनिया में आ जाता है, हमें सिखाता है कि तुमको मैंने इतना प्रोटेक्शन दिया हुआ है, अपनी छत्र छाया में रखा हुआ है, संभाल के रखा, ऊपर से भी मैं हर बच्चे को मदद करता हूं। आपको फील होता है कि नहीं कि बाबा हमारे को सूक्ष्म में भी कितनी मदद कर रहा है, ऊपर से गाइड करता है, और फिर भी हम किसी की और औरों की छोड़ो ब्राह्मणों की नेगेटिविटी अगर हम अंदर ले आए फिर तो हो गई छुट्टी, फिर तो हमें परिवार में संशय आ जाएगा, उसकी शक्ति में संशय आ जाएगा, घूम कर फिर भगवान में भी संशय आ जाएगा। हे परमात्मा, कहीं तो ये कह देते यहां से तो बाहर वाले अच्छे हैं। अब बताओ जिसके मन में और मुख में भी ये आया उसको कहेंगे कि भगवान पर निश्चय है, उसकी स्थापना पर निश्चय है, उसके ड्राम नहीं है। अब किया क्या जाए। अब बाबा कहता है अब गुण ना देखो, गुण देखो। अच्छा, अब आप पहले गुणों को ढूंढें, इसमें गुण कहाँ है, तो आपको छांटना पड़ेगा कि नहीं, अवगुण ये है गुण ये है, इसमें मैं गुण ढूंढ के रखूं, तो आपके मन में अवगुण तो आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई कहे आपके हीरे की अंगूठी कूड़ेदान में पड़ी है, निकाल लो, सिर्फ अंगूठी निकालना, तो आपको कूड़ेदान से डील तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अब इसका क्या उपाय है, गुण देखो, आदत पड़ी हुई अवगुण देखने की। अब हम किसी को देखते हैं, पहले तो उसके अवगुण याद आते हैं, भाई नहीं देखने, अवगुण खराब चीज है, पहले देख तो लिए, अब उसमें ढूंढो। जिसके अंदर अवगुण देखते हैं उसका गुण ढूंढना भी कठिनाई आती है। जो अपना फ्रेंड होता है उसके अवगुण दिखते ही नहीं, उसका गुण ही दिखता है। इसलिए बाबा कहता है क्या किया जाए, तपस्या इसीलिए कराई जाती है कि कई हमारे ऐसे संस्कार होते हैं बड़े स्ट्रांग, जैसे थोड़ी आग में थोड़ी चीज पिघलती है, उससे ज्यादा स्ट्रांग हो तो और ज्यादा आग चाहिए, अति स्ट्रांग हो तो उसके लिए तो बहुत बड़ा भट्टा जलाना पड़ता है और लगातार आग देनी पड़ती है। अब जब हम कहते हैं तो कह जाए इससे बात कर ले, इससे तो मैंने बात नहीं करनी, बड़ा मुश्किल, मेरी शांति भंग हो जाएगी, इससे अच्छा है कोई और कर ले। अब ये क्या है, तो ये गरमाया इसीलिए जाता है कि वो जो हमारी जमा हुई कड़े चीज है वो हटे। कईयों से हम इजीली बात कर लेते, कईयों से कहते हैं बस मेरे से बुलवाओ ना, अच्छा बताओ अंदर है कुछ ना, नहीं है तो बिहेवियर ऐसा कैसे है। आप देखेंगे दो व्यक्तियों की नहीं बनती, वो गुजर रहे हैं ऐसे इजहार करेंगे जैसे हमने उसको देखा ही नहीं, और सबसे ज्यादा उस वही देखते हैं, अच्छा बोलेंगे नहीं, अच्छा अब आप सोचो जरा सा भी देख लेंगे तो पूरा ऐसे लिखवा लो उस पर क्या देखा था। अब भगवान कहता है ये कैसे किया जाए, इसलिए वैष्णव बनना है, पूरे वैष्णव बनना है, तो मन के वैष्णव बनना है। किसी भी प्रकार का भोजन जो आत्मा को शुद्ध करने वाला वो स्वीकार नहीं करना, क्योंकि तो अगर वो करेंगे तो बाहर के जो डिसिप्लिन है उसमें भी ढील आ जाएगी। कहीं बाबा ने कहा है ना याद करके खा लो, अब बाबा ने किस लिए किस परिस्थिति में कहा ना, बाबा ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है, लेकिन किसको किसके लिए किस उसको लांग करके अपना मतलब हल कर लेते हैं। बाबा का ज्ञान बाबा को भी सुना देते हैं कि बाबा आपने तो ये कहा था। इसलिए मन मत से हम श्री मत को टेस्ट करें, जो चीज तो मन मत और श्री मत से मिल जाए वो तो ओके है, और जहां श्री मत और मन मत में थोड़ा फर्क आ जाए कोशिश करेंगे हो रहा है, अन्य ने कितना कर लिया लिस्ट बनाते हैं उसकी पर चिंतन तब करके। बाबा कहता है कि भट्टी का मतलब ये है, जिसको कहते हैं गुफा में बैठना, एक ही इसका मंत्र है कि हम एकांत में हो जाएं और एकाग्र हो जाएं, और कोई मतलब नहीं है। हम चलते फिरते भी योग लगाते हैं, कर्म योगी हैं, उसका प्रभाव पड़ता है, वो हमें मदद करता है कि हम एकांत में हो जाएं और एकाग्र हो जाएं, क्योंकि जब ऑर्डर आएगा या मौका आएगा चल एवर रेडी का, उस वक्त आपको कौन खींचेगा, ये तो अपना अपना सवाल है, सोचना चाहिए। अभी मुझे एवर रेडी का आ जाए, ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खींचेगी। अगर उसको नहीं काटा होगा, आपने देखा होगा कईयों के प्राण नहीं निकलते, एक आत्मा भी याद आती रहेगी मुश्किल हो जाता है। एक आत्मा यहां तो पता नहीं कितने जन्मों के कितने, तो बाबा ने कहा सबसे पहले तो अपने संस्कार ही हैं, और चीजें छोड़ भी दो बंद कमरे में बैठ जाओ कोई अंदर नहीं आएगा, लेकिन ये जो अंदर है ये क्या करेंगे। इसलिए भट्टी का मतलब है वो लक्ष्य को पाना जो हमें नॉर्मली ध्यान में नहीं आता, उसको यहां ध्यान में आता है, तो ध्यान में ये आता है मुझे बनना है वैष्णव, गुण देखना है। चलो अब गुण तो छोड़ दो, अब गुण को हम कैसे देखें? तो बाबा कहता है इसके लिए आप ढूंढो कि अवगुणों को हटाओ, गुणों बड़ा मुश्किल है। इसलिए बाबा ने बहुत आसान फार्मूला दिया कि सोचो ही अच्छा, मन में सोचो ही अच्छा तो फिर क्या होगा? जब आप अच्छा ही सोचने लग जाएंगे, अच्छा ही देखने लग जाएंगे, मन से ही अच्छा संकल्प उठेगा, तो ऑटोमेटिकली जो खराब चीज है वो क्या हो जाएगी? कबाड़ी की चीज हो जाएगी। अब बाबा कहता है बहुत अच्छी चीजें दिखती हैं तो स्वर्ग से मुकाबला कर लो, यहां बहुत अच्छा गार्डन है, स्वर्ग उस जैसा कोई है? अच्छा, वहां के देवताओं के शरीर कितने शानदार हैं। तो बाबा कहता है उसके लिए भी आपको उस वक्त गार्डन के बजाय वो आ जाए। तो बाबा ने हमको ये एक्सरसाइज सिखाई हुई है। एक्सरसाइज का क्या मतलब है कि पता होना कौन सी चीज कहां रखी और मौके पे उसका फटाफट आ जाना। आपके किचन में 6 डब्बे पड़े हो, सब सफेद हैं, और आपको पता ही ना हो कि नमक कहां है, चीनी कहां है, मैदा कहां है, अरारोट कहां है, तो गड़बड़ होगी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा है कि बेस्ट तपस्या ये है, ये तपस्या है कि मैं अपने सारे चक्कर को घुमाऊं और अपने कंट्रोल से घुमाऊं। ऐसे नहीं परम धाम जा रहे हैं, पहुंच गए किसी मित्र के घर है? अच्छा, फिर क्या ये क्या हुआ? नहीं, इसको टाइट करके ये अपने कंट्रोल से एक मिनट के लिए तो सही है, क्योंकि एक मिनट भी करेंगे एक जगह भी नहीं। बाबा कहता लगाओ, आपको अपने घर का पता है, परम शांति, यहां शांति में बैठना मुश्किल, शांति में बैठा दो परेशान हो जाएंगे। जो लोग दुनिया में शांति मांगते हैं उनके लिए सबसे मुश्किल शांति में बैठना है। कोई खिलौना दे दो, बच्चे बुच्चे आ जाएं आपके प्रोग्राम में, कोई टीवी लगा दो तो शांत हो जाए, पर असली शांति नहीं है, वो वाली है। इसी प्रकार से हम समझते हैं हम शांत हैं, अपनी खुशी की चीज कर ली, चलो आज पहाड़ पे घूमे आते हैं, आज ताजमहल देखे आते। बाबा कहता ये अशांति आपको भटका रही है, जो शांत होगा वो तो भटकेगा ही नहीं, वो कहेगा मैं और ये काम करूं, मुझे तो परम धाम इतना बड़ा स्थान है जहां मुझे जाना है उसकी तैयारी करूं, ऐसा न हो मौका परम धाम जाने का है और कितने बोरी बिस्तर साथ हो और कहें जी तुम तो रुक जाओ, जो हैंड बैग वाले आगे जाओ, फिर क्या होगा? संस्कार भी हो सकते हैं, आपके धन संपत्ति भी हो सकते हैं, सोचते हैं इसको सफल कर लेंगे सफल कर लेंगे, फिर सोचते हैं थोड़ा सा तो रख लो, मौके पे काम आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं मेरे पर निश्चय है या धन पर निश्चय है, क्या होगा? इसलिए उस पर भरोसा का मतलब वो कहता है मैं तुम्हारी हर 21 जन्मों के लिए तुम्हें इतना दे रहा हूं, अगर इसका विश्वास नहीं तो वो कहां विश्वास होगा, तुम्हें ढीले डाले होंगे। इसलिए ये यात्रा, ताकि अगर हमें कलयुग की कोई चीज अच्छी लगे, लगनी नहीं चाहिए, तो फौरन सतयुग की चीज सामने आ जाए, अरे ये क्या है, अगर लगे तो। तो इसलिए अपने मन को सिर्फ और चीजें लंबी चौड़ी छोड़ दो, अपने मन को मुझे वैष्णव बनाना। और बेस्ट तरीका ये है कि बाबा कहता है श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ और मिले हुए संकल्प से साधारण संकल्प भी है, कि मैं तो साधारण हूं। तो बाबा भूल गया, दूसरों की भेंट में देखा इस युद्ध को तो महारथी गिनते हैं, मेरे को कोई पूछता ही नहीं। मैं तो गया किचन में, किसी ने कहा हट इधर से, मैं तो सुधारा हूं। अब बाबा कहता है कि तुम्हारा वो जो था कि मेरी सोमान है, मैं बाबा हर बच्चे को, जब तक बाबा साकार में पाठ अव्यक्त में बजा रहा है, हर बच्चे को बाबा की 100% सपोर्ट है। हम खुद ही पीछे हट जाएं कि मनुष्य ने मुझे ऐसा कह दिया। अगर दुनिया में जाओ तो कई लोग संसार में भी ऐसा करते हैं, आपको नहीं जानते, आपको धक्का दे देंगे। रिश्तेदारों में भी आपका इंसल्ट कर देते हैं, लोग बच बच के चलते हैं, कुछ बोलो ना, कुछ उल्टा ना हो जाए। यहां तो है ही ऐसी दुनिया, किसी बीके ने कह दिया, ये तो बीके ने कहा है ना, बार वाला कहता तो और बात तो एक ही है। इसलिए अपने समान इतना पावरफुल हो, भगवान है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको बाबा कहते हैं निश्चय। और निश्चित तो निश्चिंत, निश्चय कोई कागज पे लिखने की चीज नहीं है, कि निश्चय वाले को निश्चित पता है, उसको कोई डाउट का मार्जिन ही नहीं है। जो हो रहा है आपके सामने, एक बीके आपके पैसे चुरा के ले जा रहा है। अच्छा, आमतौर पे क्या करेंगे, ब्रह्मा कुमारी में भी ऐसा होता है, जो हो रहा है 100% ठीक है ड्रामा अनुसार, ये इतना होना चाहिए। जो उसके लिए कार्रवाई करो, पर अपने को इन्वॉल्व तो नहीं करो कि आपका सांस फूल जाए, आप समझे कि मेरी सज्जू की बादशाही चली गई अगर मेरा बटुआ चला गया, फिर आप निश्चिंत होंगे। तो दुनिया में चिंता दुनिया वालों को है, अगर बीके को भी चिंता हो गई किसी भी प्रकार की, वो समझेगा मेरी चिंता राइट है। हर एक दुनिया का चिंता करने वाला यही समझता है कि मेरी चिंता जायज है। दूसरे को कहेगा क्यों भाई, इसमें चिंता करनी चाहिए कि नहीं, उसका वजीर होगा हाँ जी जरूर करनी चाहिए, और तसल्ली हो गई। भगवान की श्रीमत अलग, उसकी श्रीमत ले रहे हैं, क्योंकि अपने जैसा है ना, तो अपने जैसों से राय करेंगे। तब बाबा कहता है मन मत प्लस मित्रों की मत, बीच में अपना संस्कार और हामी भर देता है, छुट्टी हो गई। सारा ज्ञान एक तरफ, सारी खुदाई एक तरफ। इसलिए भगवान कहता है बड़ी सावधान। और इस दुनिया से इतनी डिटैचमेंट हो, इतनी डिटैचमेंट हो, आप सारे क्राउड में बैठे हैं पर आप न्यारे हैं। तब बाबा कहता है अब वो टाइम आ रहा है, अब वो टाइम आ रहा है जब एक सेकंड में, आजकल बाबा ने देखा होगा जो बाबा ड्रिल कराता है, मिनट नहीं कहता बल्कि रिपीट करता है, मिनट नहीं सेकंड, एक सेकंड में बाबा हमेशा कहता है क्या से क्या हो जाएगा। अब इसका आप अर्थ समझ लो, तो अगर हम उस सेकंड की तैयारी नहीं करेंगे, ये भट्टियां इसीलिए हैं कि यहां आकर हम अपनी सूक्ष्म छोटी छोटी बातों को देखें, और फिर बाबा कहता है देखें ही नहीं, इसको चेंज करें। देख लिया मेरे में ये है, वर्णन कर दिया, फिर कहा पिछली भट्टी में भी आए थे, चेंज तो हुआ नहीं, और छुट्टी, पहले ही अपना रिजल्ट भी निकाल लिया। नहीं, बाबा कहते हैं कर्म का फल किसी भी वक्त आप सच्चे दिल से लगन से धारण कर लो, बाबा आपकी उसमें जरूर डबल मदद करेगा, पर अपने पे संशय तो ना करो। इसलिए इतना वैराग होना चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा को था। यही कहते थे बाबा थोड़ा बता तो देते, शरीर छोड़ने से 2 घंटे पहले तो बता देते हैं, मैं छोड़ने वाला हूं, आप तो अंतर्यामी है। तो कहता बता देता तो तुम छोड़ने देते नहीं। इसलिए अब ब्रह्मा बाबा को देखो, जब मम्मा होती थी तो ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं तो शरीर मेरा बूढ़ा है, मम्मा अंत तक रहेगी, यही यज्ञ को संभाल लेगी। फोटो बनाए हुए बाबा ने, शक्ति सेना के आगे खड़ी है। मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब तो बाबा भी तो हमारी तरफ नंबर वन पुरुषार्थी था, उसके दिल में नहीं आया होगा ये क्या हो गया है मम्मा ने शरीर, नहीं टेस्ट है। तो टेस्ट को बाबा कहता क्वेश्चन नहीं करो, टेस्ट क्यों आया, टेस्ट समझ के पास करना है मुझे, कर दिया। अच्छा फिर अचानक बाबा अभी स्थापना भी नहीं हुई, विदेशों में सेंटर भी नहीं खोले, बाबा ने बोल रखा अरे विदेशों में सेंटर खोलेंगे, तुम्हारी दादियां भाषण करेंगी दुनिया में ज्ञान। श्री बाबा ने कहा चल, तो बाबा ने सोचा तो जरूर तैयारी की हुई होगी ना, आगे बाबा संभाल लेगा। उस वक्त भी देखने वाला था, पुराने पुराने बच्चे उनके चेहरे अलग अलग थे, कई बिल्कुल बाबा का काम है बाबा चलाएगा, अरे अब मुरली कौन चलाएगा, यज्ञ कैसे चलेगा, ये तो पूरा हो गया, ऐसे भी थे। तो बाबा कहते भगवान का यज्ञ है उसने चलाना है, तो आपको सोचना चाहिए आगे क्या होगा। आजकल भी कई सोचते हैं अरे दादियों की तो एज ज्यादा हो गई अब क्या होगा, अब ऐसे सोचने वाले बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, समय को देखकर अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं, या ये डाउट कर रहे हैं और सोच रहे हैं पता नहीं यज्ञ कब तक चलना है, मैं अपना तो प्रबंध कर लूं। इसलिए बाबा कहता है कि अरे ऑलमाइटी के पास आए हो तुम, आत्मा हो, आत्मा शरीर वगैरह तो अब शरीर छूट जाए तो आत्मा का ये तो कुछ भी नहीं है, तो अपना पार्ट बजाओ, आत्मा में अच्छे संस्कार भरो, यहां भी अच्छा हो, आगे वही होगा जो यहां है। इसलिए मन से पक्के वैष्णव और मन का हर संकल्प एक संकल्प सिर्फ, जैसे किसी ने किसी का ब्लड चेक करना हो कितना ब्लड लेता है जरा सा, आजकल तो एक ड्रॉप ब्लड से 80 तरह के रिजल्ट आ जाते हैं, विदेश में मशीनें निकली हुई हैं, ये है। तो आप अपने एक संकल्प को पकड़ के अपना रिजल्ट निकालो, इस मेरे क्योंकि एक चावल का एक दाना बता देता पतीले में क्या है, आप एक संकल्प पकड़ो फिर उसमें देखो, आपको पता लग जाएगा कि उसमें और क्या चाहिए। उसमें ज्ञान तो है, स्नेह तो है, युक्ति युक्त है, मर्यादा युक्त है, शक्ति है, उस शक्ति से दूसरों को भी चावल की खुशबू आ रही है कि बासमती का चावल है या नहीं, इसलिए ये हमको चेक करना। और फिर बाबा कहता है वैल्यू कितनी है, एक संकल्प की कितनी वैल्यू है संगम का, क्योंकि ये एक के बाद दूसरा वैसा ही होगा। अगर आप तरक्की पर हैं, चढ़ती कला पर हैं, तो ऐसे नहीं है सिर्फ एक रस है ना, दूसरा और पावरफुल होना चाहिए, तीसरा और पावर, और बाकी जनरेटरों से मुक्त होना चाहिए। हलवा भी जब तैयार होता है तो किनारे छोड़ देता है, जितना घी चाहिए होता ले लेता, बाकी सब छोड़ देता है। अब हमको तैयार होना या करछी चलाते रहना ये भी बने। इसलिए अब बाबा कहता है पुरुषार्थ नाम छोड़ दो, तैयारी और वहां जाने की खुशी में रहो कि भाई हम वहां जा रहे हैं, ये तो आप ही हो जाएगा, जो होना हमें नहीं करना। तब आप देखेंगे आपको निरंतर ऑटोमेटिक प्रेरणा आती रहेगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि हरेक को अपना ही आप संवारना है हमने, बाकी साथी हैं, साथी दो तरह से मदद कर सकते हैं, अगर साथी मददगार हैं तो भी मदद कर सकते हैं, अगर साथी रास्ते में रोड़ा अटकाते हैं तो भी मदद कर सकते हैं। ये ज्ञान ऐसा है जिसमें फेवरेबल भी ठीक और अपोजिशन भी ठीक, क्योंकि वो आपको पक्का करेगी, वो आपको सहयोग देगी। हम कह ही नहीं सकते ये मेरी अपोजिशन क्यों मेरे को, बाबा कहता है खुशकिस्मत हो कि तुमको पेपर आ रहा है, ढीले डाले को तो मास्टर भी कहते हैं इसको अभी इम्तिहान क्या लेना है इसका, इसका तो पहले ही पता है। इसलिए ये वंडरफुल ज्ञान है, इसमें हर चीज बड़ी आसान है, हर चीज बड़ी आसान है, क्योंकि आसान ही चीज सदा रह सकती है, मुश्किल चीज सदा नहीं रह सकती। बाबा कहते हैं सहज ज्ञान सहज तरीका, ओम शांति से आप सारा ज्ञान धारण कर सकते प्रैक्टिकल। इसलिए आप भट्टी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अपना अपना लक्ष्य भट्टी में रखिए कि बाबा के स्थान पर आए हैं, समझो कि बाबा डायरेक्ट आप बाबा के फोकस में हैं। और यहां मदद बहुत है, संकल्प जल्दी से सिमट जाएंगे और आप जो चाहते हैं मेरे में एकाग्रता आए, शांति आए, आपके सामने ऑटोमेटिक जैसे शांत हो जाता है, कोई पानी ठहर जाता है तो उसमें सब कुछ दिखता है, ऑटोमेटिक आपके आगे आपका आईना आएगा। ये थोड़ा सा और करना बाबा में, ये थोड़ा सा और करना, बस मेरे लिए वो है। अब दूसरे क्या कर रहे हैं, वो कैसी तरह, वो अपना अपना हर एक कर रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। भाई साहब का बहुत बहुत थैंक्स जो समय निकाल करके हमको इतनी शक्तिशाली क्लास कराई कि हमारे अंदर पूरी परिपक्वता आ जाए, कैसे हमारे संस्कार श्रेष्ठ बन जाएं जो हम आत्माओं ने साथ लेकर के जाने हैं, मन पूरा वैष्णव हो जाए। तो बहुत सुंदर क्लास हम सब ने सुनी, तो भाई साहब को फिर से थैंक्स देंगे एक हाथ की थाली जा करके, और एश्योरेंस भी देंगे कि हाँ हम ऐसा बनकर ही दिखाएंगे, तभी हमारा इस भट्टी में आने से पूरा लाभ होगा। तो फिर से एक बारी हाथ हिलाएंगे भाई साहब, ये सभी मजबूत होकर के जाएंगे, परिपक्व होकर के जाएंगे। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है।